नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के साथ वार्ता करेंगे। रूस में भारत के राजदूत ने कहा, भारत जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीद जारी रखेगा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा। रूस और यूक्रेन ने 146 युद्ध बंदियों की अदला बदली की। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। शांति समझौते के तहत यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का समर्थन किया। और वियतनाम के पूर्वी तट पर कल सुबह तूफान काजिकी के टकराने की आशंका को देखते हुए करीब 6 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी फिजी के प्रधानमंत्री के सम्मान में आज दिन में भोज का आयोजन करेंगे। श्री राबुका 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने उनकी अगवानी की। श्री राबुका के साथ उनकी पत्नी सुलेती राबुका भी भारत आई हैं। प्रधानमंत्री राबुका की ये पहली भारत यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज शाम श्री राबुका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
भारत फिजी संबंध आपसी सम्मान, सहयोग और मजबूत सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है। फिजी के प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और फिजी के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। यह सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करती है। वर्षों से फिजी के एक प्रमुख विकास साझेदार के रूप में भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में, विशेषकर क्षमता निर्माण के क्षेत्र में, राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में फिजी का समर्थन किया है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, स्वच्छ ऊर्जा और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत क्षेत्रों में सहयोग फिजी के साथ भारत की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में गगन यात्रियों ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप के लिए आयोजित सम्मान समारोह में कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नया अध्याय है।
हमारा कंट्रीब्यूशन केवल स्पेस में उपग्रह भेजने तक सीमित नहीं है। आज भारत चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। आज भारत गगनयान जैसे मिशंस के लिए भी पूरी तरह तैयार है। मैं इसे केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का नया अध्याय है, जहां हम विश्व की बड़ी स्पेस पावर्स के बीच खड़े हो रहे हैं।
रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा है कि जहां भी सस्ता तेल मिलेगा भारत वहां से तेल खरीदना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि अमरीकी टैरिफ के बीच भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी से साक्षात्कार में श्री विनय कुमार ने कहा कि रूसी तेल की खरीद के कारण भारतीय आयातों पर कुल 50% शुल्क का अमरीकी निर्णय गलत, अविवेकपूर्ण और अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा नीति का उद्देश्य अपने नागरिकों के लिए विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना है और रूस तथा अन्य देशों के साथ सहयोग ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिरता में योगदान दिया है। गाजा शहर के सबसे बड़े इलाके पर कब्जा करने की इसराइल की योजना के तहत विमानों और टैंकों ने शहर के कई हिस्सों पर बमबारी की है। निवासियों ने शहर के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में लगातार विस्फोटों की बात कही है। इसराइल ने गजा शहर पर हमले जारी रखने का संकल्प लिया है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काटज ने कहा कि हमास को हराने, सभी बंधकों की रिहाई और युद्ध समाप्त करने के लिए पूरी ताकत से हमला जारी रहेंगे। इससे पहले श्री काटज ने कहा था कि हमले की योजना को स्वीकृति दे दी गई है। अगर हमास युद्ध समाप्त करने के लिए सभी बंधकों की रिहाई और इस क्षेत्र पर इसराइल के स्थायी सुरक्षा नियंत्रण की शर्तों पर सहमत नहीं होता तो गजा को तबाह कर दिया जाएगा। इजरायली सेना ने उत्तरी गजा पट्टी के जबालिया पर हमले बढ़ाने की पुष्टि की है। सेना ने कहा कि अतिरिक्त क्षेत्रों में हमले बढ़ाने का उद्देश्य हमास को फिर से संगठित होने से रोकना है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस और यूक्रेन ने संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता के बाद कल 146 युद्धबंदियों की अदला बदली की। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रिहा किए गए सभी रूसी युद्धबंदियों को बेलारूस में मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस से लौटे कैदियों की तस्वीरें पोस्ट करते हुए कहा कि इनमें से अधिकतर वर्ष 2022 में रूस के हमले के बाद से ही कैद थे। उन्होंने कैदियों की अदला बदली में संयुक्त अरब अमीरात की भूमिका के लिए उसका आभार व्यक्त किया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से कहा है कि वे किसी भी शांति समझौते में मजबूत सुरक्षा गारंटी की यूक्रेन की मांग का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा ऐसी किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत सेना भेजने से इनकार नहीं करेगा। मार्च में पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार यूक्रेन की यात्रा पर आए श्री कार्नी कल यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मध्य कीव में आयोजित समारोह में जेलेंस्की के साथ शामिल हुए। इस समारोह में यूक्रेन के लिए ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग भी शामिल थे। यूक्रेन पर रूस के हमले के 3.5 साल बाद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं और यूक्रेन अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी की संभावित रूपरेखा तैयार कर रहा है। वियतनाम ने तूफान काजिकी को देखते हुए 5,86,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का आदेश दिया है। तूफान के कारण 166 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चल रही है और आज वियतनाम पहुंचने से पहले इसके और तेज होने की आशंका है। वियतनाम के मध्य प्रांतों थान हुआ, क्वांग त्री, ह्यू और दानांग के लोगों को अपने घर छोड़ने का आदेश दिया गया है। उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और नावों को समुद्र में नहीं जाने को कहा गया है। तूफान चीन के हेनान प्रांत से गुजर रहा है जहां 320 किलोमीटर मिलीमीटर तक बारिश का अनुमान है। वियतनाम के अंदरूनी इलाकों में पहुंचने के साथ ही तूफान कमजोर होने की उम्मीद है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत का 2047 में आजादी की शताब्दी तक दुनिया के शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में शामिल होने का लक्ष्य है। अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में खेल क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
हमें ओलंपिक्स आयोजन के दिशा में आगे भी बढ़ना है और आने वाले 10 सालों में देश से 1 से 10 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में भी ले जाना है। 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब मोदी जी ने हमें लक्ष्य दिया है कि हमें 1 से 5 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में हमारा स्थान को अंकित करना है।
और अब खेल जगत की खबरों के साथ है मृगनिनी पांडे।
भारत की शर्वरी सोमनाथ शिंदे ने अंडर 18 विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने कल कनाडा के विनिपेग में रोमांचक फाइनल में दक्षिण कोरिया की किम येवोन को 6-5 से हराया। इस टूर्नामेंट में भारत का ये दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले चिकिता त्रिपाठी ने अंडर 21 कम्पाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उधर भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत 24 स्वर्ण, 9 रजत और 10 कांस्य सहित कुल 43 पदक लेकर पहले स्थान पर है। इस बीच सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में अनुष्का कुमारी की शानदार हैट्रिक की बदौलत भारतीय टीम ने कल थिम्पू में मेजबान भूटान को 8-0 से हराया। ये भारतीय टीम की टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत है। भारत के 3 मैचों में 9 अंक हैं और वो बांग्लादेश और नेपाल से आगे है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के साथ वार्ता करेंगे। रूस में भारत के राजदूत ने कहा, भारत जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीद जारी रखेगा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा। रूस और यूक्रेन ने 146 युद्धबंदियों की अदलाबदली की। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की और वियतनाम के पूर्वी तट पर कल सुबह तूफान काजिकी के टकराने की आशंका को देखते हुए करीब 6 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।